मेरे जिगरी नौजवान साथियों नमस्कार। आज 5 जुलाई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं पल्लवी, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, नीरज सिंह नई दिल्ली से, एकंश ताम्रकार महोबा उत्तर प्रदेश से, प्रिंस कुमार तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से और राहुल चौहान आप भी हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप लोगों को कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, तो सूचनाएं कुछ इस प्रकार की हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी और शनिवार को ही आपको कुरुक्षेत्र के भी 2 आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, इस बार मैं योजना के आर्टिकल आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं। उसका कारण यह है कि योजना का जो अंक था वो योग पर था और योग पर मैं ऑलरेडी आपको 4 आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश के प्रोवाइड कर चुका हूं, तो अब उसमें कुछ ऐसा महत्वपूर्ण आर्टिकल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जिसे मैं आपको पढ़ने के लिए दूं और चूंकि उसका जो नया अंक है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी आप कुरुक्षेत्र से ही काम चलाएं और जैसे योजना पत्रिका आ जाएगी तो फिर आपको विधिवत तरीके से योजना के भी आर्टिकल्स मैं प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ ही साथ आपको एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है और बेसिकली उसे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन मान सकते हैं। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आप सब इसके साथ क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि आप सब इसे देखें और किनारे कर दें कि ठीक है बाद में कभी करेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो प्रैक्टिस लिखने की करनी ही चाहिए। मैंने कहा अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो, और सीधी सी बात है कि अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो मेंस तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, यानी कि इसका कोई विकल्प नहीं है, ये आपकी च्वाइस नहीं बल्कि आपकी जरूरत होनी चाहिए। और फिर हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं फ्रेंड्स, उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था, आज मुख्य विषय के तहत आर्थिक सर्वेक्षण पर हम लोग कुछ बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले दूसरी कुछ जरूरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक अच्छी खबर यह है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो परीक्षाएं होती हैं वे परीक्षाएं अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ दूसरी 13 अन्य भाषाओं में भी होंगी। ये आप लोगों के लिए एक सूचना मात्र है। और 2 दिन पहले आपने एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुनी होगी जिसकी चर्चा मैंने नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट के अब जो डिसीजन है वो अब अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ कुछ अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा भाषा के स्तर पर लिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय युवाओं के लिए या भारतीय नागरिकों के लिए कह दीजिए कि भाषाओं के द्वार जो अभी तक जकड़े हुए थे धीरे धीरे ओपन अप होते जा रहे हैं। ये बात मैं खासकर इसलिए कह रहा हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट हिंदी लेकर के अपियर हो रहे हैं और जो दूसरे भी भाषाओं के माध्यम से अपियर हो रहे हैं उनमें एक थोड़ी सी नकारात्मकता की भावना आ गई है, उनमें हतोत्साहित वे हो गए हैं, उन्हें लग रहा है कि शायद उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मित्रों, लेकिन जो आने वाला समय है मान करके चलिए कि वह हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का है, आप लोगों को निराश होने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, इसकी जो कमियां हैं उन्हें हम सब समझेंगे और समझ करके दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि कुछ मेल जो आप लोगों से मिले हैं उनमें आप लोगों ने इस तरह की आशा की बात कही है और ये आश्वासन भी मुझे दिया है कि सर आप इसके लिए जो भी कहेंगे हम सब करेंगे, हम सब आपके साथ हैं, इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हमारी जो कमियां हैं उस पर मैं अगले सप्ताह थोड़े विस्तार के साथ एक इंडिपेंडेंटली सब्जेक्ट के रूप में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक बात तो आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा बिना कोई देरी के। दोस्तों, ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है आपने महसूस किया होगा कि ऑडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, जैसे आप रेडियो न्यूज सुनते हैं या और कोई दूसरी खबरें कि उसी तरह से मैं आपको खबरें सुनाता हूं, नहीं, मैं उसमें आपको एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करेंगे, ये टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, खबरों को और अपडेट करता हूं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें एनालिटिकल फॉर्म देता हूं, तो डिफरेंट तरीके से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और ये सब हिंदी मीडियम से हो रहा है। मेरे एक अर्ज आप लोगों से है कि अगर सच में आपको लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी है तो कोशिश करें कि इसे दूसरों को भी बताएं, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। मित्रों, ये फ्री है, इसके साथ कोई अर्थशास्त्र नहीं जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जिस भावना से एकेडमी इस काम को कर रही है उस भावना से जुड़कर आप भी इसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें तो डेफिनेटली हिंदी के जो स्टूडेंट हैं वो इससे लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, जो दूसरी थोड़ी खबरें हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने, ये पार्लियामेंट में बकायदे कहा गया है कि अब 40 पद जो डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के हैं वो बाहर से भरने के लिए विज्ञापन दिया है। इससे पहले 9 पद संयुक्त सचिव के लिए दिए गए थे, जिसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। उस समय मैंने इसके बारे में बात भी की थी। अब उससे नीचे के जो पद होते हैं डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के, वो 40 पद भरे जाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में, कि बाहर से लोग लिए जा रहे हैं, केवल सिविल सर्विस तक ही उसे सीमित नहीं रखा जा रहा, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं रखा जा रहा है। इस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पॉइंट को लेकर के मैंने NDTV पर 3 दिन पहले ही एक ब्लॉग लिखा है। NDTV का जो ब्लॉग होता है उसमें आप चले जाएं, मेरा यह आर्टिकल वहां अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि इसे आप एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो आपकी नजर में होने ही चाहिए। आपको मैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बताने जा रहा हूं जो अभी सितंबर में जो मेंस एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, एक तो यह है कि जो हमारा स्वच्छता अभियान है ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें हम 99% तक पहुंच गए हैं, 100% के आसपास ही मान लीजिए, बहुत बड़ी सफलता भारत की है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भारत सरकार ने 7.48 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि अकाउंट में ट्रांसफर किया है लोगों को, और इससे लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। बचत हुई है का मतलब है कि जब कैश में लोगों को भुगतान, जैसे मनरेगा की मजदूरी का भुगतान आप कैश में कर रहे हैं तो आप देने वाले से कमीशन मांग सकते हैं, उससे कम दे सकते हैं, लेकिन यहां तो सरकार सीधे आपके अकाउंट में पैसा डाल रही है, यानी कि भ्रष्टाचार के निवारण में इस जो जनधन योजना, जो जनधन खाते की जो बात कही गई उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरीके से आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। आज का मुख्य विषय आर्थिक सर्वेक्षण। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण का डॉक्यूमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इस डॉक्यूमेंट के सीधे 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ पार्ट है, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, क्योंकि अखबारों में अभी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उसे ही हाईलाइट किया गया है। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सोशल सेक्टर का। सोशल सेक्टर का मतलब है कि जो, जैसे मान लीजिए कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या काम हुआ है, वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, उनके डेटा क्या बढ़े हैं, उन सब का जो भाग है वो होता है सामाजिक क्षेत्र। उस पर अभी हमारे पास कोई, चूंकि वैसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा तब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। पहली बात कि आपके लिए उपयोगी कैसे है। देखिए, आपके सिलेबस में आर्थिक क्षेत्र भी है, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीधे सीधे है, और सोशल सेक्टर भी है। इसका मतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण दोनों ही क्षेत्र के लिए उपयोगी है। अब सवाल है कि इसका उपयोग आप करेंगे कैसे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं। पहला, अगर आप सही में आर्थिक सर्वेक्षण का उपयोग करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में आपका जो सिलेबस है बहुत क्लियर होना चाहिए, और डिटेल में, जो मैं सिलेबस की बात कह रहा हूं वो सिलेबस नहीं जो यूपीएससी ने प्रोवाइड किया है, वह सिलेबस जो वास्तव में आपको पढ़ना है वो डिटेल्स में आपको मालूम होना चाहिए, और जो यूपीएससी ने जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है वो उतने डिटेल में नहीं है, वो एक मेन पॉइंट के रूप में है, पता लगा उस मेन पॉइंट के फिर ढेर सारे सब पॉइंट है, तो वो सब पॉइंट सिलेबस में नहीं है, वो आपको मालूम होने चाहिए, पहली बात, तभी आप वहां से आंकड़े उठा सकेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण से उन तथ्यों को ले सकेंगे जो आपके काम आने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये एक प्रकार का जो पिछला हमारा वर्ष रहा है उसका लेखा जोखा है पहली बात, और इसके लेखे जोखे के आधार पर फिर वो अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताते हैं कि भाई अभी तक हमारा ये रहा है तो आगे हमारा ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण कहीं ना कहीं भविष्य में जो सरकार की नीतियां होंगी उनके बारे में भी इंडिकेट करता है, तो उसके लिए भी आपको वहां पॉइंट मिल जाता है। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसका जो कार्यकाल है आप मेंस तक समझ लीजिए, बस अभी जो सितंबर में मेंस एग्जाम होंगे वहां तक इसके आंकड़े आपके लिए उपयोगी होंगे, बट नेचुरली कि नेक्स्ट ईयर में फिर अगला आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा। तो दोस्तों जब आपके दिमाग में सिलेबस क्लियर होगा तब आप अपने लिए वहां से उन तथ्यों को उठा सकेंगे जो तथ्य एग्जामिनेशन में आपके आंसर को दूसरों की तुलना में थोड़ा विशिष्ट बना सकेंगे, और वहां आप बकायदे रेफरेंस दीजिए आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात कही गई। उदाहरण के तौर पर अब आप देखिए कि सीधी सी बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो हम $50 खरब 2025 तक अपनी अर्थव्यवस्था की बात कह रहे हैं तो उसके लिए हमको 8% का जीडीपी चाहिए, और अभी हम 7% के आसपास हैं, 8% जीडीपी। अब 8% जीडीपी आप लाएंगे कैसे? उसके लिए फिर आर्थिक सर्वेक्षण में तीन सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। पहला जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो है कि आप निजी निवेश को बढ़ाएं। सरकारी निवेश की एक सीमा है, मेरे पास वक्त नहीं है, अदरवाइज मैं निजी निवेश पर ही एक इंडिपेंडेंटली बात करके आपको समझा सकता था कि कैसे अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तीन बिंदु उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट माने कि निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रोजगार की स्थिति लानी जानी चाहिए, और दूसरा है मांग जनरेट करनी चाहिए, डिमांड जनरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड जनरेट नहीं होगी तो फिर हमारे जो अर्थव्यवस्था के साइकिल है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है। इसके बाद देखिए जो कुछ दूसरे पॉइंट है, मैं केवल आपको पॉइंट्स बता देता हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। उन्होंने कृषि की विकास दर को 2.9% बताया है जो कि कम है, हम 4% का हमने लक्ष्य रखा है लेकिन 2.9% ही है। सर ये कहा गया है कि श्रम कानूनों में सुधार किया जाए, लेबर लॉ के बारे में आप लगातार पढ़ते रहते हैं, और राजस्थान ने 2014 में ही इसकी शुरुआत कर दी थी और वहां 5 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल गए हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार भी अब लेबर लॉ में कुछ संशोधन करेगी। फिर है कि जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं इनको ऋण की सुविधाएं देने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब उसमें जो बहुत ही छोटे उद्योग हैं पहली बार ये चीज हमारे हम लोगों के सामने आई है कि वो बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रोजगार भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नए उद्योग शुरू हो रहे हैं वो ज्यादा रोजगार भी दे रहे हैं और फास्ट तरीके से वो ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो एमएसएमई हैं इनके लिए ऋण की सुविधाएं के लिए कोशिश की जाए। और ये भी कहा गया है कि भारत में जो ब्याज दर है वो बहुत ज्यादा, इसे कम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इसे कम नहीं करेंगे तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं। इसके बाद यह भी कहा गया है कि निर्यात में वृद्धि करने की कोशिश होनी चाहिए, पर्यटन उद्योग हमारा धीरे 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 मतलब पिछले साल का रिकॉर्ड बताया है कि बहुत कम हो गया है, मतलब बाहर से आने वालों की संख्या बहुत घटी है, तो पर्यटन क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाए जाने की जरूरत है। जो न्यूनतम वेतन प्रणाली है इसको लागू किया जाना चाहिए कि अगर आप मिनिमम वेजेस कहीं रख देते हैं तो ये इंश्योर करें कि लोगों को उतना मिले, लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा है, जो जब लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है तो उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, जब उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है तो वो कैसे किसी चीज की खरीदी करेंगे, तो मांग कैसे जनरेट होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है न्याय प्रणाली को लेकर के, उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारी हायर जुडिशरी है बहुत जरूरी है। दो बातें उन्होंने कही है, तीन बातें कही है। पहला तो यह है कि कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़े, दूसरा यह कि कोर्ट में काम करने के घंटे बढ़ें और दिन बढ़ें, और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारे न्यायालय को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें उन्होंने बड़े खूबसूरत आंकड़े दिए हैं, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं कि भारत सरकार में जो अधिकारी होते हैं लोग होते हैं वो साल भर में 244 दिन काम करते हैं, 244 डेज। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसे हम लोअर कोर्ट करते हैं वो 232 डेज काम करते हैं, जबकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो 190 डेज काम करता है, तो ये बहुत कम है जबकि इतने सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये भी बात कही है। तो अब आप देखिए कि मैंने अभी आपको एक डेटा बताया, आप इस डेटा को नोट कर सकते हैं, और अगर न्याय प्रणाली में सुधार की कोई से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाता है तो बकायदे आप उसमें आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए इस डेटा को लिख सकते हैं। तो सोच करके देखिए कि क्या इससे आपका जो उत्तर है वो वजनदार नहीं बन जाएगा। निश्चित रूप से बन जाएगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। कल मेरे पास जो मेल आए हैं वो बहुत खूबसूरत मेल थे, बहुत वजनी मेल थे और पढ़ने में मजा आ रहा था मित्रों, तो इसलिए आज मेरे पास मेल लिखने वाले मित्रों के नंबरों की संख्या भी कुछ ज्यादा है। तो जिन्होंने मेल भेजे हैं उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं: संध्या द्विवेदी, चेतन सिंह चौहान बुलंदसर उत्तर प्रदेश से, नीलेश राठौर, के बी मीना, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री आप भी उदयपुर राजस्थान से हैं, सुनीता खत्री पंचकुला हरियाणा से, निधि विश्वकर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश से, गिरधर प्रणामी नई दिल्ली से, अक्षित चौधरी दिल्ली से, अश्विनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से, प्रिंस कुमार मुजफ्फरपुर से, अभी यारडी, मनसीप कौर, रणजीत सिंह बैस आईआईटी खड़गपुर से और नगेंद्र साहू, आप सबका बहुत बहुत आभार दोस्तों। और इसी के साथ ही डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। और इसके साथ ही मित्रों, इससे पहले कि मैं डेली ऑडियो लेक्चर समाप्त करने की घोषणा करूं, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार करें कि बीच के ये दो दिन आपके बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत हों। दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।